मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 21 मई 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं नीरज कुमार मिश्रा सिवान बिहार से और राजेंद्र हरपाल रायपुर छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक सब्जेक्ट पर आपसे बात करने जा रहा हूं। ऑफ ट्रैक मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन में ये प्रश्न न पूछा जाए, इससे जुड़ा कोई प्रश्न न पूछा जाए, लेकिन हो सकता है कि पूछ भी लिया जाए। ज्यादा संभावना यही है कि शायद न पूछा जाए। इसके बावजूद मुझे लगा कि नहीं, चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं और उस डेमोक्रेटिक सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए शायद हमें इस विषय को भी समझना चाहिए, तो मैं आज आपसे एग्जिट पोल पर बात करूंगा जो अभी आप अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले आइए कुछ दो तीन जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन्हें देख लेते हैं। मैं आपको आज एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, जो खासकर चुनाव आयोग को लेकर है। इसमें एक बात इन्होंने कही है वो ये कि चुनाव आयोग भले ही संगठनात्मक रूप से या कानूनी रूप से सही दिखाई दे रहा हो, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वह अपनी आत्मा को खो चुकी है, यानी कि अभी जो वो काम कर रही है वह आत्मा के अनुरूप नहीं है, भावना के अनुरूप नहीं है। देखिए होता क्या है कि एक तो रूल्स रेगुलेशन के तहत आप काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर इन्होंने जो बात कर रखी है इसमें, कुछ दिनों पहले दो तीन दिनों से एक बहुत बड़ी बहस चल रही है। आपको मालूम है कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो 3 सदस्यीय आयोग है, उसमें 3 सदस्य होते हैं, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो सीनियर मोस्ट होते हैं और इसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो 3 लोग हैं। तो बट नेचुरल है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा एक डेमोक्रेटिक फार्मूले के तहत बहुमत से लिया जाएगा, यानी कि जिस मामले में भी 2 लोग सहमत होंगे उसे स्वीकार किया जाएगा। अभी आप देखिए कि जब चुनाव हो रहे थे और चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, उस समय बहुत से मामले चुनाव आयोग के सामने पहुंचते थे कि यहां आचार संहिता का उल्लंघन है। और खासकर इसमें जो बात कही गई कि जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके बहुत से मामले को लेकर के और अमित शाह जी के मामले को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उसमें से किसी को भी गलत नहीं पाया, बल्कि दूसरों के खिलाफ उन्होंने कदम उठाए। इसमें जो एक चुनाव हमारे आयुक्त हैं उन्होंने बाद में जाकर के इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया, मिस्टर लवासा। उन्होंने ये कहा कि जब भी हम लोगों की बहस होती है, किसी मुद्दे पर बातचीत होती है, बहस नहीं करना चाहिए कहना चाहिए, तो मैं जब उनसे अलग कोई बात रखता हूं तो मेरी बातें रिकॉर्ड नहीं की जाती, रिकॉर्ड ही नहीं की जाती। और वो दोनों अपने, चूंकि वो 2 हैं, 2 निर्णय ले लेते हैं और वो स्वीकार हो जाता है, यानी कि मेरी कोई अहमियत नहीं रह गई। लेकिन चलिए कानूनन तो भाई अगर वो 2 निर्णय ले रहे हैं तो बिल्कुल सही है, गलत कहीं भी नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि मेरी बातों को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया जाता। इसके बारे में जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त है उन्होंने ये बात कही कि चूंकि यह उस तरह से अर्ध न्यायिक निर्णयों में नहीं आता कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, यानी यह क्वासी जुडिशियल मैटर नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं है कि इसका रिकॉर्ड रखा जाए। इसी बात को केंद्र में रख करके यह एडिटोरियल कमेंट लिखा गया है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सच पूछे तो सन 2000 के बाद ये देखा जा रहा है कि धीरे 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 चुनाव आयोग कहीं न कहीं अपनी विश्वसनीयता और जो उसकी एक बहुत ही चमकदार छवि थी उसे खोता चला जा रहा है, और इस बार के चुनाव में यह माना जा रहा है कि उसने अपनी छवि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इसके केंद्र में जो बात कही जा रही है वो ये कि चूंकि जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी जो नियुक्ति है वो कार्यपालिका करती है, कार्यपालिका का मतलब है कैबिनेट कर रही है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने पसंद के लोगों को चुनाव आयुक्त बना देती है, और जब वो पसंद के लोगों को बनाती है तो ये जो चुनाव आयुक्त हैं ये कहीं न कहीं बड़े अनुग्रहित महसूस करते हैं और उसका आप यूं कह लीजिए कि एक तरह से ऋण चुकाने के तौर पर वो इस तरीके के निर्णय लेते हैं। और सच पूछे तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका जो जीवन होता है, उसकी जो पवित्रता होती है, उसकी जो सैंक्टिटी होती है, वो केवल चुनाव में निहित होती है। और अगर चुनाव कराने वाला संस्थान ही इस तरह का हो जाए कि उसकी छवि पर जनता का विश्वास न रह जाए, तो ये मान करके चलिए कि बहुत ही गंभीर मामला है। यह एक प्रकार से चुनाव आयोग पर ही अविश्वास करने का मामला नहीं है, बल्कि सच बात यह है कि जो हमारे प्रतिनिधि चुन करके आएंगे उन पर अविश्वास करने का मामला बन जाता है। और जब आप प्रतिनिधियों पर ही विश्वास नहीं कर पाएंगे तो फिर लोकतंत्र पर विश्वास कैसे कर पाएंगे? तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है मित्रों, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रश्न किस तरह से घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे अभी कहना मुश्किल है, स्ट्रेट तो पूछे ही नहीं जाते हैं अब, लेकिन फिर भी आपको हर तरह के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। मित्रों, आज आपको करंट कंटेंट के तहत एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार का स्कोर बोर्ड, हिंदू में एक आर्टिकल छपा था उसको लेकर के एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आर्टिकल एक तरफा है। एक तरफा इस मायने में इसमें दिया है ना कि सरकार का स्कोर बोर्ड, तो सरकार का स्कोर बोर्ड जब आप लिख रहे हैं तो बट नेचुरल है कि आपको दोनों पक्षों को लेकर के चलना चाहिए। भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार ने कुछ अच्छे भी कदम उठाए होंगे, कुछ गलत कदम उठा लिए होंगे, कुछ कदम जो उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए ही नहीं है। इस आर्टिकल की जो सीमा है वो ये है कि इसने सरकार के उन कदमों का ही केवल उल्लेख किया है जो या तो उसने गलत उठाए या उसने उठाए ही नहीं, जबकि सरकार ने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जो भ्रष्टाचार को रोकने में मददगार हो सकते हैं। मैं इसलिए आपको सतर्क कर रहा हूं। देखिए, सिविल सर्वेंट बनने की दृष्टि से यानी कि एग्जामिनेशन देने की दृष्टि से आपका जो दृष्टिकोण है वो एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। जो समीक्षा होती है वो समीक्षा दोनों पक्षों को ध्यान में रख करके होती है। जब आप उसको एक पक्ष में ले जाते हैं तो वो एक प्रकार से आलोचना हो जाती है, आलोचनात्मक समीक्षा नहीं रह जाती। तो हमारे जो उत्तर हैं वो संतुलित होने चाहिए। हां, यदि सच में सरकार ने कुछ भी नहीं किया है तो बिल्कुल आप खुलेआम ये कह सकते हैं कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। फ्रेंड्स, एक और आर्टिकल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो आज के नई दुनिया में छपा है और आपके जो बहुत ही प्रिय लेखक हैं उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, डॉक्टर भरत झुनझुनवाला। इन्होंने सच्ची सरकार तो जनता ही है इस पर लेख लिखा है और ये बहुत खूबसूरत लेख है, जैसा कि वो हर लेख को खूबसूरत बना देते हैं। इसमें ब्रिटेन की प्रणाली की उन्होंने चर्चा की है, उन्होंने स्विट्जरलैंड की प्रणाली की चर्चा की है, उन्होंने अमेरिका की प्रणाली की चर्चा की है, और इस चर्चा के पीछे जो मूल मकसद है, इसके केंद्र में जो पॉइंट है जिसको ध्यान में रख करके आप फिर इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद अपने लिए इसका ज्यादा उपयोग कर सकेंगे, वो ये है कि जनता एक बार 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधि चुन करके भेज देती है, जो भारत में हमारे यहां सिस्टम है, लेकिन इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड वगैरह में इस तरह की व्यवस्था है कि बहुत जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, जैसे ब्रिटेन में ब्रेक्जिट का मुद्दा हुआ, तो उसके लिए वो जनता के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई ये बताइए कि ये किया जाए या नहीं किया जाए। छोटे मोटे मुद्दों पर तो आप रोज जनता के सामने नहीं जा सकते, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए जनता के सामने जाया जाना चाहिए। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से के उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसके मेंबर बन रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। तो उन्होंने कहा कि भाई इतने बड़े मुद्दे के लिए जनता को तो छोड़िए, संसद तक की अनुमति नहीं ली गई और सरकार ने अपने स्तर पर निर्णय लेकर के और उस पर हस्ताक्षर कर दिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर बन गए। उन्होंने कहा कि जो गलत है, हाँ ये बात भी है कि अगर हम जनता के पास जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हमें सही ही निर्णय मिल जाए, जनता कभी कभी गलत भी निर्णय दे सकती है, लेकिन लोकतंत्र में ये होना चाहिए, ये उन्होंने स्थापित किया है। प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, और डेमोक्रेसी तो मतलब यूं कह लीजिए कि आपके पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का कोर ही है। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, वो है एग्जिट पोल। देखिए, मैंने केवल समझने के लिए इस टॉपिक को आपके सामने रखा है कि इसे थोड़ा सा आप समझिए। वैसे एग्जिट पोल के बारे में आपको मालूम होगा कि बकायदे प्रतिबंध लगा हुआ है, प्रतिबंध, लेकिन कब तक? जब तक कि मतदान पूरे नहीं हो जाते। देखिए, हमारे 7 चरणों में मतदान हुए हैं, इससे पहले एग्जिट पोल नहीं आया। जब मतदान खत्म, 6 बजे मतदान हमारा खत्म हुआ है, 6:30 बजे तक इस पर प्रतिबंध था और इसके बाद एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। एग्जिट पोल का मतलब है, एग्जिट मतलब निर्गम, निकलना। सिनेमा हॉल में आप जाते हैं तो देखिए जहां से आपको निकलना होता है उस पर एग्जिट लिखा होता है, यानी कि आप मतदान देकर के बाहर निकल रहे हैं। बाहर इस तरह का रिसर्च करने वाले स्टडी करने वाले कुछ लोग खड़े हैं, वो आपसे पूछते हैं कि भैया आपने किसको वोट दिया है, और उसके आधार पर फिर वो निष्कर्ष निकालते हैं कि किन किन पार्टियों को कितने कितने सीट मिलने की संभावना। ये है एग्जिट पोल। दोस्तों अभी तक जो एग्जिट पोल हुए हैं ज्यादातर एग्जिट पोल गलत ही हुए हैं, क्योंकि अब भारत जैसा देश जहां 60 करोड़ से अधिक लोग वोट डालते हों, आप सोच करके देखिए, जहां इतनी ज्यादा वैविधता हो, हर तरह की वैविधता हो, राजनीतिक विविधता भी आप देखिए पार्टियों की कितनी है, वहां केवल कुछ लोगों के सैंपल के आधार पर एग्जिट मतलब निर्णय मतलब सही स्तर तक पहुंच पाना अपने आप में एक बहुत असंभव काम है, बहुत लगभग लगभग आप कह लीजिए कि व्यावहारिक ही नहीं रह जाता है। दूसरी बात है कि हमारी जो एग्जिट पोल करने वाली जो एजेंसीज हैं वो अपने मेथोडोलॉजी को नहीं बताती हैं कि वे किस सिस्टम के तहत एग्जिट पोल कर रहे हैं, उनका सैंपल क्या है, यानी कि उन लोगों ने किन किन लोगों से बात की, जो बात की वो अलग अलग वर्ग के लोग हैं कि नहीं है, अलग अलग उम्र के लोग हैं कि नहीं है, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं तो आप अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि जब तक आपका सैंपल जो आप सर्वे कर रहे हैं उसके तहत जिससे जिनसे आप डेटा ले रहे हैं वो अगर हर क्षेत्र हर तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो थोड़े से लोगों के डेटा के आधार पर भी आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो भारत के में अभी जो एग्जिट पोल की जो पद्धति अपनाई जा रही है, कहा जाता है कि वो बहुत साइंटिफिक नहीं, और सच पूछिए तो फॉरेन कंट्रीज में भी जो लिए जा रहे हैं कोई बहुत नहीं है। अभी आप देखिए कि 2-4-5 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में चुनाव हुए हैं, वहां के एग्जिट पोल के बिल्कुल अपोजिट सही नतीजे आए हैं। तो एग्जिट पोल का ये स्तर है। एक जो महत्वपूर्ण बात इसमें मैं कहना चाहूंगा, आप देखिए कि जैसे ही कल परसों एग्जिट पोल शाम को आए और कल शेयर मार्केट बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा है। शेयर मार्केट इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि भाई शेयर मार्केट क्यों बढ़ गया। शेयर मार्केट इसलिए बढ़ गया कि एग्जिट पोल में यह दिखाया गया कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सरकार बनाएगी और काफी बहुमत से सरकार बनाएगी। इसे शेयर मार्केट किस तरीके से लेता है, इसे वो लेता है कि भाई जो अभी तक सरकार थी वही सरकार फिर से शासन में आ रही है, तो जो सुधार है आर्थिक सुधार काफी कुछ इस सरकार ने किए हैं, तो चूंकि वही सरकार फिर से आ रही है तो उन्हें आगे बढ़ाएगी। दूसरा, शेयर मार्केट को यह भी लगता है कि भाई जो सरकार आ रही है वो अच्छे खासे बहुमत के साथ आ रही है तो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, तो जो भी इसकी नीतियां होंगी थोड़ी सी स्थायी नीतियां होंगी, ऐसा नहीं कि रोज बदली जा रही, सरकार अगर रोज बदल रही है तो रोज नीतियां बदल रही हैं, तो उनको यह भी भरोसा हो गया कि नहीं सरकार स्थायी सरकार होगी और इसका लाभ भारत की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तो अगर अर्थव्यवस्था को मिलेगा इसका मतलब है कि भारत में जो कंपनियां हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, और अगर प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो शेयर के दाम अभी बढ़ा दिए जाने चाहिए, तो शेयर मार्केट बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है। लेकिन ये कितना सही है कितना गलत है ये बिल्कुल अलग बात है मित्रों, क्योंकि इन सब में बहुत सारी आप कह लीजिए कि फिक्सिंग होती है। जैसे बाद में ये भी कहा गया कि जो बहुत से एग्जिट पोल करने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ था, सट्टा बाजार में पैसा लगाया हुआ था, तो उन्होंने जानबूझ करके दिखाया है कि सरकार आ रही है और अब चूंकि शेयर मार्केट बढ़ गया है वो बेच बाज करके अलग हो जाएंगे, कमा लेंगे, जब रिजल्ट जैसा भी आना होगा आता रहेगा। तो इस तरह के जो एग्जिट पोल हैं ये अपने आप में एक किस्म के गैम्बलिंग का भी काम कर रहे हैं। तो मित्रों मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी इसके बारे में दी है कि चूंकि आप एक सतर्क युवा हैं और साथ ही साथ आप सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तैयारी में कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होने चाहिए जो सीधे सीधे भले ही आपके एग्जामिनेशन में काम ना आए लेकिन आपको एम्पावर्ड करने में उनका काफी रोल हो सकता है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स में आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं दिलीप कोच के प्रति जो असम के हैं। मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।